आरंभिक वर्णन
एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
परिचय।
आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे शख्स पर बात कर रहे हैं जिसने अमेरिकी इतिहास और राजनीति पर कह सकते हैं एक बहुत गहरी, जटिल और शायद स्थायी छाप छोड़ी। लिंडन बेन्स जॉनसन, मतलब LBJ, अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति।
हाँ, और ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का जीवन परिचय नहीं है, हम इसे रॉबर्ट कैरो के जो कई वॉल्यूम वाली, मतलब दशकों की मेहनत से तैयार हुई जीवनी है द ईयर्स ऑफ लिंडन जॉनसन, उसके चश्मे से देख रहे हैं।
अच्छा।
कैरो का काम सिर्फ जॉनसन के बारे में नहीं है, ये तो असल में सत्ता की प्रकृति, उसकी जो चाहत होती है और इंसान के चरित्र पर उसका क्या असर पड़ता है, उसका एक महाकाव्य है।
तो लिंडन जॉनसन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज भी उनकी कहानी क्यों सुननी चाहिए?
तो देखिए, नागरिक अधिकारों में वो ऐतिहासिक प्रगति, गरीबी मिटाने के लिए ग्रेट सोसाइटी जैसे कितने बड़े कार्यक्रम।
हाँ, वो तो कमाल का काम था।
और फिर दूसरी तरफ वो वियतनाम युद्ध का दलदल, जिसने न सिर्फ उनके राष्ट्रपति पद को बल्कि पूरे देश को, मतलब गहरे जख्म दिए। तो उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही आदमी महानता और त्रासदी दोनों का प्रतीक बन सकता है।
सही कहा।
और कैरो का जो मूल तर्क है, जो पूरी सीरीज में गूंजता है, वो ये कि सत्ता जो है ना, वो चरित्र को बनाती या बिगाड़ती नहीं है।
अच्छा।
वो उसे उजागर कर देती है, सबके सामने ला देती है। और जॉनसन का जीवन शायद इस बात का सबसे सबसे प्रबल उदाहरण है। उनकी वो बेहिसाब महत्वाकांक्षा, उनकी गहरी असुरक्षाएं, कहीं कहीं उनकी क्रूरता और कहीं उनकी करुणा, ये सब कुछ सत्ता के शिखर पर पहुंचकर और ज्यादा साफ दिखने लगा।
तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि जॉनसन के इस जटिल जीवन की परतों को खोलें और समझें कि सत्ता का खेल क्या है और मानवीय स्वभाव कैसा है।
कालानुक्रमिक यात्रा,
द क्रोनोलॉजिकल जर्नी का प्रारंभिक वर्ष और प्रभाव, द फॉर्मेटिव ईयर्स।
तो चलिए जॉनसन की कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जन्म हुआ 1908 में टेक्सास के हिल कंट्री इलाके में। कैरो इस इलाके के बारे में बताते हैं, एक बहुत कठोर, अलग थलग और गरीबी से जूझती हुई जमीन।
हाँ, और ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी, ये एक तरह का, मतलब, अपमान और लाचारी का माहौल था।
इसका जॉनसन पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा। कैरो बताते हैं कि जॉनसन ने बचपन में उस गरीबी को ना एक पर्सनल बेइज्जती की तरह महसूस किया। पिता थे सैम एली जॉनसन जूनियर, वो सिद्धांतवादी तो थे लेकिन एक असफल राजनेता थे। उनकी राजनीतिक हार, पैसों की तंगी, इसने परिवार को बहुत मुश्किल में डाल दिया था। जॉनसन ने अपने पिता की वो लाचारी देखी और शायद तभी सोच लिया कि वो कभी ऐसी हालत में नहीं पड़ेंगे।
और उनकी माँ रिबेका बेन्स जॉनसन, वो तो पढ़ी लिखी थी, उनमें महत्वाकांक्षा भी थी।
हाँ, शिक्षित थी, लेकिन उस माहौल में उनकी प्रतिभा एक तरह से सीमित रह गई। रिबेका ने बेटे में पढ़ाई और आगे बढ़ने की इच्छा तो जगाई,
लेकिन
कैरो ये भी दिखाते हैं कि जॉनसन अपनी माँ की जो अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी ना, उसका बोझ भी महसूस करते थे। तो बचपन की ये सारी परिस्थितियाँ, पिता की नाकामी का डर और माँ की उम्मीदों का दबाव, इन सब ने मिलकर जॉनसन के अंदर सत्ता और पहचान पाने की एक जबरदस्त, मतलब लगभग कभी ना मिटने वाली भूख पैदा कर दी।
उनको लगता था कि पैसा और ताकत ही उन्हें उस अपमान और असुरक्षा से बचा सकते हैं।
बिल्कुल, जो उन्होंने बचपन में महसूस किया था। कैरो एक घटना बताते हैं जब स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। ये छोटी छोटी बातें, ये अपमान उनके दिमाग में बहुत गहरे बैठ गए।
अच्छा।
और शायद यही अनुभव बाद में उनके उस दोहरे चरित्र की वजह बना। एक तरफ गरीबों और जो वंचित लोग थे उनके लिए उनमें सच्ची सहानुभूति थी क्योंकि वो खुद वहां से गुजरे थे।
हाँ, वो जानते थे कि अवसर ना होना क्या होता है।
सही, लेकिन दूसरी तरफ उसी अनुभव ने उन्हें सत्ता पाने के लिए बहुत निर्मम भी बना दिया। सत्ता उनके लिए सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रह गई थी, वो असुरक्षा से बचने का एक कवच बन गई थी, एक जुनून।
हाँ।
उत्थान और संघर्ष।
कॉलेज के दिनों के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ाई से ज्यादा लोगों को साधने, उन पर अपना असर डालने में माहिर थे।
हाँ, साउथ वेस्ट टेक्सास स्टेट टीचर्स कॉलेज में उन्होंने छात्र राजनीति में वो सारे दांव पेच सीख लिए जो बाद में उनके बहुत काम आए। लोगों को पढ़ना, उनकी जरूरतें समझना, गठबंधन बनाना और जहां जरूरत हो वहां दबाव डालना। पढ़ाई में शायद ठीक ठाक ही थे, लेकिन लोगों को चलाने की कला में वो मतलब असाधारण थे।
फिर वो कोटुला टेक्सास गए गरीब मैक्सिकन अमेरिकी बच्चों को पढ़ाने, इसका क्या मतलब रहा?
वो एक अहम मोड़ था। वहां उन्होंने ऐसी गरीबी और भेदभाव देखा जो हिल कंट्री से भी ज्यादा भयानक था। कैरो लिखते हैं कि इस अनुभव ने जॉनसन की करुणा को जगाया और शायद उनके जो भविष्य के ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम थे उनके बीज यहीं पड़े।
लेकिन वहां भी उनका स्वभाव दिखा।
हाँ, वो सिर्फ टीचर नहीं बनना चाहते थे, वो उन बच्चों की पूरी दुनिया बदलना चाहते थे, उन पर अपनी इच्छा थोपना चाहते थे, उन्हें अमेरिकी बनाना चाहते थे एक तरह से।
इसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, पहले कांग्रेसी रिचर्ड क्लैम्बर्ग के सचिव बने और फिर राष्ट्रीय युवा प्रशासन NYA के टेक्सास निदेशक। ये उनके राजनीतिक सफर के शुरुआती कदम थे।
और इन भूमिकाओं में उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिभा का क्या कहते हैं भरपूर प्रदर्शन किया। क्लैम्बर्ग के सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने वॉशिंगटन का सिस्टम समझा, कॉन्टैक्ट्स बनाए।
और NYA निदेशक के रूप में?
NYA निदेशक के तौर पर उन्होंने इसे सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं चलाया। कैरो बहुत विस्तार से बताते हैं कि कैसे जॉनसन ने NYA को अपने पर्सनल पॉलिटिकल नेटवर्क की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हर नौकरी जो उन्होंने दी, हर सड़क या पुल जो उन्होंने बनवाया, वो उनके लिए वफादारी के एक धागा बन गया। उन्होंने नौकरशाही को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया।
फिर 1937 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, वो भी एक दिलचस्प किस्सा है।
बहुत दिलचस्प। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का पक्का समर्थक दिखाया, न्यू डील का हिमायती बताया। लेकिन कैरो दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे उन्होंने टेक्सास के जो ताकतवर तेल और कंस्ट्रक्शन लॉबी थी उनके हितों को भी साधा, जिन्होंने उनके कैंपेन को पैसा दिया।
तो ये उनकी राजनीतिक शैली का एक शुरुआती उदाहरण था।
हाँ, प्रगतिशील दिखना लेकिन सत्ता के लिए जरूरी समझौते किसी से भी करना।
ग, चरम उपलब्धियों और विरासत, पीक अचीवमेंट्स एंड लेगेसी।
और फिर कई सालों के अनुभव के बाद सीनेट में वो महारत हासिल करने के बाद 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई और वो अचानक राष्ट्रपति बन गए। सीनेट के मास्टर के लिए राष्ट्रपति पद कैसा रहा?
वो एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। सीनेट में तो वो हर सदस्य को पर्सनली जानते थे, उन पे दबाव बना सकते थे, डील कर सकते थे। राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया और एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी से निपटना था जिसे सिर्फ पर्सनल स्किल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उनके राष्ट्रपति काल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या मानी जाती हैं?
बिना किसी शक के 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम और 1965 का वोटिंग अधिकार अधिनियम, ये अमेरिकी इतिहास के मील के पत्थर हैं। इन्होंने कानूनी तौर पर नस्ली अलगाव और भेदभाव को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
और उनके ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम?
हाँ, वो भी, मेडिकेयर, मेडिकेड, शिक्षा में निवेश, गरीबी के खिलाफ जंग, इन सब ने अमेरिकी समाज कल्याण व्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया।
लेकिन इन महान उपलब्धियों पर एक गहरा साया भी पड़ा।
हाँ, वियतनाम युद्ध का साया, जो एक छोटा सा मिलिट्री एक्शन माना जा रहा था, वो एक बड़े खूनी और देश को बांटने वाले युद्ध में बदल गया। इसने न सिर्फ हजारों अमेरिकी और लाखों वियतनामी जाने ली, बल्कि अमेरिका को सामाजिक और राजनीतिक रूप से तोड़कर रख दिया। जॉनसन इस युद्ध के दलदल में फंसते चले गए और ये उनकी विरासत का एक दुखद अविभाज्य हिस्सा बन गया।
रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन कैसा था?
कैरो ने एक तरह की दुखद महानता या ट्रेजिक ग्रैंड्योर के प्रतीक के तौर पर दिखाते हैं। वो अपने टेक्सास रैंच पर लौट गए, अपनी विरासत को समझने और शायद समझाने की कोशिश करते रहे। वो आदमी जो हमेशा लोगों से घिरा रहना चाहता था, जो हर कमरे पर हावी होना चाहता था, वो अंत में अकेला रह गया।
शायद इस एहसास के साथ कि इतनी ज्यादा राजनीतिक ताकत भी इतिहास के फैसले को नहीं बदल सकती।
हाँ, शायद यही
मूल दर्शन और मूल्य।
जॉनसन के कामों के पीछे का मतलब मूल दर्शन क्या था, क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी, क्या सिर्फ सत्ता ही सब कुछ थी?
सत्ता उनके लिए हाँ निश्चित रूप से केंद्रीय थी। कैरो के हिसाब से जॉनसन मानते थे कि मानवीय रिश्तों की जो असली करेंसी है वो शक्ति ही है। राजनीति उनके लिए सिद्धांतों या विचारों की लड़ाई उतनी नहीं थी जितनी की इच्छा शक्ति और प्रभाव का खेल था।
उनका मानना था कि हर इंसान की कोई ना कोई जरूरत होती है, कोई ना कोई डर होता है।
बिल्कुल।
और उसे समझकर उसे प्रभावित किया जा सकता है। ये सोच आई कहां से? क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख थी?
नहीं, ये उनके बचपन के अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ी थी। उन्होंने शक्तिहीनता का दर्द झेला था और देखा था कि ये इंसान को कैसे तोड़ सकती है। तो एक स्तर पर वो सच में लोगों की मदद करना चाहते थे, उन्हें गरीबी और भेदभाव से ऊपर उठाना चाहते थे।
लेकिन इसमें एक और पेंच था।
हाँ, कैरो ये भी साफ करते हैं कि उनकी मदद करने की इच्छा इस गहरी जरूरत से भी जुड़ी थी कि उन्हें मदद करने वाले के रूप में देखा जाए, पहचाना जाए, सराहा जाए। मतलब उनकी परोपकारिता उनकी निजी महत्वाकांक्षा से अलग नहीं थी।
उनका काम करने का तरीका भी बहुत अजीब था, जिसे द ट्रीटमेंट कहा गया। ये क्या था असल में?
द जॉनसन ट्रीटमेंट उनकी वो पर्सनल फिजिकली डोमिनेट करने वाली स्टाइल थी। कैरो इसका बड़ा सजीव वर्णन करते हैं, कैसे जॉनसन किसी सीनेटर या अधिकारी को घेर लेते थे, उनके बिल्कुल करीब आके खड़े हो जाते थे।
हाँ, सुना है।
कभी फुसलाते, कभी धमकाते, कभी तर्क देते, कभी इमोशनल अपील करते, अपनी शारीरिक उपस्थिति और जबरदस्त इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाते थे। ये उनकी इस सोच का प्रतीक था कि राजनीति व्यक्तिगत होती है और हर विरोध को पर्सनल लेवल पर ही तोड़ा जा सकता है।
तो क्या उनकी प्रेरणा सिर्फ बचपन का डर और सत्ता की भूख ही थी?
ये उससे ज्यादा जटिल हैं। हाँ, बचपन की वो शक्तिहीनता का आतंक उन्हें जिंदगी भर ड्राइव करता रहा। लेकिन कैरो ये भी दिखाते हैं कि जॉनसन ने जो पीड़ा और अन्याय देखा था वो उन्हें सचमुच परेशान करता था। नागरिक अधिकारों के लिए उनका जुनून सिर्फ राजनीतिक हिसाब किताब नहीं था, उसमें एक नैतिक पहलू भी था, चाहे वो उनकी महत्वाकांक्षा से कितना भी मिला हुआ क्यों ना हो। उनकी सत्ता की चाहत दूसरों को उस अपमान से बचाने की इच्छा से भी जुड़ी थी जिससे वो खुद गुजरे थे।
कैरो ये भी लिखते हैं कि उनमें सत्ता के साथ साथ प्यार और मंजूरी की भी बहुत तीव्र इच्छा थी।
हाँ, और ये उनके जीवन का एक और विरोधाभास का। वो चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार करें, लेकिन उनके तरीके झूठ बोलना, धोखा देना, दबाव बनाना अक्सर लोगों को उनसे दूर कर देते थे, उन्हें डरा देते थे।
प्यार की जगह डर मिलता था।
सही, ये एक ऐसा द्वंद्व था जिससे वो शायद खुद भी जूझते रहे।
और जब मुश्किलें आती थीं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी?
उनकी आदत कभी पीछे हटने या आसानी से समझौता करने की नहीं थी। वो हमेशा रास्ता खोजते थे, चाहे जैसे भी हो, नियमों को मोड़ना, दबाव बनाना, कुछ भी करना पड़े। यही दृढ़ संकल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें वो असंभव से लगने वाले नागरिक अधिकार कानून पास कराने में मदद की।
लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी।
बिल्कुल, इसी ने उन्हें वियतनाम में और गहरे फंसा दिया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कुछ समस्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें सिर्फ इच्छा शक्ति और सत्ता से हल नहीं किया जा सकता। भी गहराई से बदला।
खैरो कई मोड़ों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन हाँ, तीन खास तौर पर उभर कर आते। पहला, निश्चित रूप से 1948 का सीनेट चुनाव। पहला मोड़, 1948 सीनेट रेस, लैंडस्लाइड लिंडन का जन्म।
इसे अमेरिकी राजनीतिक इतिहास के सबसे विवादित चुनावों में से एक कहा जाता है। जॉनसन का मुकाबला था पूर्व गवर्नर कोक स्टीवनसन से, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे।
हाँ, और जॉनसन चुनाव लगभग हार ही रहे थे। हार का मतलब होता उनके राजनीतिक करियर का करीब करीब अंत। चुनाव के दिन बीत गए, वोटों की गिनती चल रही थी और जॉनसन पीछे थे। फिर अचानक चुनाव के 6 दिन बाद दक्षिण टेक्सास की जिम वेल्स काउंटी के एक बैलेट बॉक्स, बॉक्स 13 से 202 अतिरिक्त वोट निकले।
202 वोट, और वो भी रहस्यमय तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दर्ज थे और लगभग सारे जॉनसन के पक्ष में।
बिल्कुल, सोचिए जरा, इन 202 वोटों ने जॉनसन को सिर्फ 87 वोटों के मामूली अंतर से जीत दिला दी। कैरो इसे धोखाधड़ी और चुनावी चोरी का एक मतलब बेशर्म उदाहरण मानते हैं।
इस घटना का जॉनसन पर क्या असर पड़ा?
गहरा असर पड़ा। इसने शायद उनके मन में ये बात पक्की कर दी कि जीतने के लिए नियम तोड़े जा सकते हैं, कि नैतिकता सत्ता की राह में सिर्फ एक बाधा है जिसे पार किया जा सकता है। वो और ज्यादा कठोर, ज्यादा सनकी बन गए, लेकिन इसने उनकी वो जबरदस्त जुझारूपन और हार न मानने की जिद को भी दिखाया।
और यहीं से उन्हें वो व्यंग्यात्मक नाम मिला, लैंडस्लाइड लिंडन।
हाँ, लैंडस्लाइड लिंडन। दूसरा मोड़, सीनेट मेजॉरिटी लीडर बनना, शक्ति में महारत।
1955 में वे सीनेट के इतिहास में सबसे कम उम्र के मेजॉरिटी लीडर बने।
हाँ, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था? देखिए, ये सिर्फ पद पाना नहीं था, ये उस पद को अभूतपूर्व शक्ति का केंद्र बना देना था। कैरो बताते हैं कि जॉनसन से पहले सीनेट मेजॉरिटी लीडर का पद काफी हद तक एक कह लीजिए प्रक्रियात्मक भूमिका थी। जॉनसन ने इसे विधायी शाखा यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच का सबसे शक्तिशाली पद बना दिया।
उन्होंने ये किया कैसे?
कैरो इसका पूरा ब्यौरा देते हैं, द जॉनसन सिस्टम। उन्होंने हर सीनेटर की निजी जरूरतों, महत्वाकांक्षाओं, कमजोरियों का एक विस्तृत खुफिया नेटवर्क बना रखा था।
अच्छा।
वो जानते थे कि किसे क्या चाहिए, किसे कैसे मनाया जा सकता है। वे कमेटी असाइनमेंट, लॉबिंग और बेशक अपने उस कुख्यात जॉनसन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके सीनेट को अपनी उंगलियों पर नचाते थे।
कमाल है।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक कुशल और निर्मम नेता के हाथों में विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति जितनी ही असरदार हो सकती है। वो वोट गिनते नहीं थे, वो वोट बनाते थे।
तीसरा मोड़, 1957, नागरिक अधिकार अधिनियम, नैतिक नेतृत्व और राजनीतिक गणना। ये पुनर्निर्माण काल के बाद पहला संघीय नागरिक अधिकार कानून था। एक दक्षिणी डेमोक्रेट होने के नाते जॉनसन के लिए ये बहुत मुश्किल रास्ता रहा होगा।
बिल्कुल, उन्हें अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं, जो कि राष्ट्रपति पद की ओर थीं, और अपने दक्षिणी वोट बैंक के बीच संतुलन साधना था। दक्षिणी सीनेटर किसी भी सार्थक नागरिक अधिकार कानून का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार बैठे थे।
तो जॉनसन ने क्या रास्ता निकाला?
उनका समाधान राजनीतिक रूप से बहुत चतुर था, लेकिन नैतिक रूप से थोड़ा जटिल था। उन्होंने कानून पारित कराने का बीड़ा उठाया, जिससे वो राष्ट्रीय मंच पर एक प्रगतिशील नेता के रूप में दिखे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये पक्का किया कि कानून इतना कमजोर हो जाए कि दक्षिणी सीनेटर उसे फिलीबस्टर करके रोक ना पाए। फिलीबस्टर मतलब लंबी बहस करके कानून को लटका देना।
तो कानून का व्यवहारिक असर सीमित था?
हाँ, शुरुआती कानून का जमीनी असर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इसने 80 सालों में पहली बार संघीय सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को लागू करने का सिद्धांत स्थापित किया। इसने भविष्य के ज्यादा मजबूत कानूनों का रास्ता खोला, जैसे 1964 और 65 के अधिनियम।
और इसने जॉनसन को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया जो उत्तर और दक्षिण के बीच पुल बना सकता है।
सही, ये दिखाता है कि कैसे जॉनसन ने एक नैतिक जरूरत को राजनैतिक अवसर में बदला, अपनी छवि और शक्ति दोनों को बढ़ाया।
मानवीय सबक और चिंतन।
जॉनसन का जीवन इतना उतार चढ़ाव भरा, इतना विरोधाभासी है। आज के समय में उनकी कहानी से क्या मानवीय सबक लिए जा सकते हैं? मतलब ये महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और सत्ता के बारे में हमें क्या सिखाता है?
कर सकते हैं, जॉनसन के मामले में गरीबी और शक्तिहीनता के डर ने उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया, लेकिन वही डर उनके विनाशकारी व्यवहार का स्रोत भी बना।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है अक्सर हमारे सबसे गहरे डरों से जुड़ी होती है।
बिल्कुल, और सत्ता और नैतिकता के बीच का जो तनाव उनकी कहानी में लगातार दिखता है, वो तो शायद हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा।
हाँ, ये तो है।
जॉनसन का जीवन हमें इस मुश्किल सवाल से जूझने पर मजबूर करता है कि क्या महान लक्ष्यों को पाने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करना ठीक है। नागरिक अधिकार जैसे जरूरी कानून पास कराने के लिए उन्होंने जो जोड़ तोड़ और दबाव का इस्तेमाल किया, क्या वो जरूरी था? क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है?
इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
बिल्कुल नहीं, और हर नेता और समाज को इसका सामना करना पड़ता है।
कैरो का वो विचार फिर याद आता है, सत्ता उजागर करती है।
हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। सत्ता ने जॉनसन की क्रूरता, उनकी बेईमानी, उनके अहंकार को उजागर किया, लेकिन उसने उनकी असाधारण राजनीतिक कुशलता, उनकी सच्ची करुणा, खासकर गरीबों के लिए और देश के लिए कुछ बड़ा करने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया।
तो उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेताओं को और शायद खुद को भी आंकते समय हमें उनकी जटिलताओं को देखना चाहिए।
सही कहा, अच्छाई और बुराई के मिश्रण को समझना चाहिए।
तीन अंतिम निष्कर्ष,
3 final takeaways।
अगर हमें जॉनसन के जीवन और कैरो के इस विश्लेषण से 3 मुख्य बातें निकालनी हो, तो वो क्या होंगी? एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक व्यवहारिक सबक। ठीक है, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे भावनात्मक रूप से जो झकझोरने वाला सबक है वो ये है कि बचपन की गहरी असुरक्षाएं और अपमान का डर किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को कैसे परिभाषित कर सकता है। ये असाधारण ड्राइव और महत्वाकांक्षा तो पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही आत्मविनाशकारी व्यवहार और दूसरों को नियंत्रित करने की अनैतिक इच्छा को भी जन्म दे सकता है। सत्ता की भूख अक्सर मतलब भेद्यता के गहरे डर की ही एक शक्ल होती है।
बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक निष्कर्ष जो कैरो बार बार जोर देकर कहते हैं, वो ये है कि राजनीतिक शक्ति अनिवार्य रूप से चरित्र को प्रकट करती है, उसे बनाती या बिगाड़ती नहीं। और इतिहास ये भी दिखाता है कि महान परिवर्तनकारी लक्ष्यों को पाने के लिए, जैसे नागरिक अधिकार, अक्सर ऐसे राजनीतिक दांवपेंच और नैतिक समझौतों की जरूरत पड़ती है जो शायद आदर्शवादी पैमानों पर खरे ना उतरें। ये नेतृत्व की एक स्थायी दुविधा है।
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सबसे व्यवहारिक और जो हम सब पर लागू होता है, वो सबक ये है कि किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो सरकार हो, बिजनेस हो या हमारा अपना समुदाय, शक्ति कैसे काम करती है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। शक्ति कैसे हासिल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है और इसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है, और ये कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और नैतिक जिम्मेदारी के बीच का जो तनाव है वो एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है जिससे हम सभी को किसी न किसी स्तर पर निपटना पड़ता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? लिंडन जॉनसन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या बड़े ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले नेतृत्व के लिए वैसे नैतिक समझौते जरूरी हैं जो जॉनसन ने किए, या रॉबर्ट कैरो का दशकों लंबा प्रयास इस एक जटिल व्यक्ति को समझने के बहाने वास्तव में खुद सत्ता के रहस्य को, उसकी पहेली को समझने का एक प्रयास है? एक ऐसी पहेली जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वॉशिंगटन DC हो, दिल्ली हो या दुनिया का कोई भी कोना। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।